लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारे आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवारे आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन के पॉल षष्ठम सभागार में संत पॉलुस की शिक्षा पर अपनी धर्म शिक्षा माला को आगे बढ़ाते हुए हजारों विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों को संबोधित कर कहा।
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro percorso per comprendere meglio l'insegnamento di San Paolo, ci incontriamo oggi con un tema difficile ma importante.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। संत पॉलुस की शिक्षा को बेहतर रूप से समझने की हमारी यात्रा में आज हम एक कठिन किंतु महत्वपूर्ण विषय पर गौर करेंगे। वह विषय है न्याय संगत ठहराया जाना। न्याय संगत ठहराया जाना क्या है? हम पापी न्याय संगत सिद्ध किए जाते हैं। कौन न्याय संगत सिद्ध करता है? परिवर्तन की यह प्रक्रिया ही न्याय संगत ठहराया जाना है। हम ईश्वर के सामने धार्मिक ठहराए जाते हैं। यह सच है कि हमारे व्यक्तिगत पाप हमारे साथ रहते, किंतु मूल रूप से हम धर्मी हैं। यही न्याय संगत ठहराया जाना है। संत पापा ने कहा, इस विषय पर प्रेरित के विचार की अधिक सटीक व्याख्या करने हेतु बहुत अधिक बहस हो चुका है, और जैसा कि अक्सर होता है, इस बहस का अंत भी एक विरोधाभासी स्थिति से होता है। गलातियों के नाम संत पॉलुस के पत्र में रोमियों के पत्र के समान पॉलुस उस सच्चाई पर जोर देते हैं कि न्याय संगत ठहराया जाना ख्रिस्त में विश्वास से आता है। संत पापा ने कहा कि हमारे मन में विचार आ सकता है कि हम धर्मी हैं क्योंकि हम सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह ठीक है, पर इससे हम न्याय संगत सिद्ध नहीं हो सकते। इसके लिए चाहिए कि कोई हमें ईश्वर के सामने न्याय संगत ठहराए। हमारे मन में यह भी विचार आ सकता है कि मैं पापी हूँ, कैसे धर्मी कहला सकता। यह भी सही है, किंतु मूल रूप में हम धर्मी हैं। हमें किसने न्याय संगत सिद्ध किया है? संत पापा ने कहा कि ख्रिस्त ने हमें न्याय संगत ठहराया है। उन्होंने कहा कि न्याय संगत शब्द के पीछे क्या छिपा हुआ है जो विश्वास के लिए बहुत अधिक निर्णायक है। पूर्ण परिभाषा तक पहुंचना आसान नहीं है, किंतु संत पॉलुस के विचार को लेते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि न्याय संगत ठहराया जाना ईश्वर की करुणा का परिणाम है जो क्षमा प्रदान करते हैं, और वे हमारे ईश्वर हैं, अत्यंत भले, करुणावान, धैर्यशील, करुणा से पूर्ण, जो लगातार हमें क्षमा प्रदान करते हैं। वास्तव में ईश्वर ने यीशु की मृत्यु से पाप को नष्ट कर दिया है और हमें पूर्ण रूप से क्षमा एवं मुक्ति प्रदान की है। इस तरह न्याय संगत ठहराए गए पापी ईश्वर के द्वारा स्वागत किए जाते और उनके द्वारा मेल मिलाप करते हैं। यह सृष्टिकर्ता एवं सृष्टि के बीच पुनः संबंध जोड़ना है, जैसा कि यह अवज्ञा के कारण पाप करने से पहले मूल रूप में था। ईश्वर के द्वारा न्याय संगत ठहराया जाना पाप द्वारा खोए गए निर्दोषता को वापस पाना है। किस तरह न्याय संगत ठहराया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने का अर्थ है संत पॉलुस की दूसरी शिक्षा की घोषणा को समझना कि न्याय संगत ठहराया जाना कृपा द्वारा संभव है। केवल कृपा द्वारा हम न्याय संगत ठहराए जाते हैं। कोई कह सकता है कि मैं दूसरों की तरह न्यायाधीश के पास जाकर पैसा चुकाकर न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। संत पापा ने कहा कि इसके लिए मूल्य चुकाना नहीं है, हम सभी के लिए एक व्यक्ति ख्रिस्त ने कीमत चुकाई है। ख्रिस्त जो हमारे लिए मरे, उनसे हम सभी के लिए पिता प्रदत्त वरदान प्राप्त होता है। संत पापा ने कहा कि प्रेरित के मन में वह अनुभव हमेशा रहा जिसने उनके जीवन को बदल दिया था, अर्थात दमिश्क के रास्ते पर पुनर्जीवित प्रभु से मुलाकात। पौलुस स्वाभिमानी, धर्मी और उत्साही व्यक्ति थे। वे इस बात पर यकीन करते थे कि न्याय संहिता के निष्ठापूर्ण पालन से आता है। हालांकि अब वे ख्रिस्त के द्वारा जीते जा चुके थे और विश्वास ने उन्हें गहराई से बदल दिया था और अब तक छिपी सच्चाई को खोजने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। संत पापा ने कहा, हम अपने प्रयास से धर्मी नहीं बनते, हम नहीं बल्कि ख्रिस्त अपनी कृपा से हमें धर्मी बनाते हैं। अतः पौलुस यीशु के रहस्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब कुछ का त्याग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि सिर्फ ईश्वर की कृपा हमें बचा सकती है। हम न्याय संगत ठहराए गए हैं अपनी क्षमता से नहीं, बल्कि सिर्फ ईश्वर की कृपा से। यही हमें दृढ़ता प्रदान करता है। हम पापी हैं, सही बात है, किंतु हम ईश्वर की कृपा से जीवन की राह पर आगे बढ़ सकते हैं, जो हमें उतनी ही बार न्याय संगत ठहराते हैं जितनी बार हम क्षमा याचना करते हैं। हम न्याय संगत ठहराए जा चुके हैं, किंतु वे दूसरी बार क्षमा करने आएंगे। प्रेरित के लिए विश्वास एक सर्वव्यापी मूल्य है। यह विश्वासी के जीवन के हर क्षण में और हर आयाम को छूता है। बपतिस्मा से लेकर दुनिया से विदा लेने तक सब कुछ यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में समाहित है, जिनसे मुक्ति मिलती है। विश्वास द्वारा न्याय संगत ठहराए जाने में कृपा की प्राथमिकता है, जिसको ईश्वर उन लोगों को प्रदान करते हैं जो बिना किसी भेदभाव के उनके पुत्र पर विश्वास करते हैं। संत पापा ने कहा कि हमें इस निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए कि संत पौलुस के लिए मूसा की संहिता का कोई मतलब नहीं है। निश्चय ही यह ईश्वर का अटल वरदान है। संत पौलुस लिखते हैं, यह पौत्र है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अच्छा है कि हम आज्ञाओं का पालन करें, किंतु हम इसे भी अपनी शक्ति पर आधारित नहीं मान सकते। ख्रिस्त में ईश्वर प्रदत्त कृपा ही आधार है। यह कृपा जो हमें न्याय संगत सिद्ध किए जाने पर प्राप्त होती है, उनके द्वारा हम मुफ्त प्रेम किए जाते हैं, जो हमें अपनी ओर से उन्हें ठोस रूप में प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। संत पापा ने कहा, इस पृष्ठभूमि पर प्रेरित संत याकूब की शिक्षा को याद करना अच्छा है, जो लिखते हैं, व्यक्ति केवल विश्वास से नहीं बल्कि कार्यों से धार्मिक बनता है। संत पापा ने कहा, यह हमारे लिए उल्टा लग सकता है, किंतु उल्टा नहीं है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव। यदि धार्मिकता हमारे कार्यों से प्रकट नहीं होता, तब यह जमीन के अंदर निर्जीव अवस्था में पड़ा है। हमें इसे कार्य द्वारा मूर्त रूप देना है। इस तरह याकूब के शब्द पौलुस की शिक्षा को पूर्ण करते हैं। विश्वास का उत्तर देने के लिए ईश्वर और पड़ोसी दोनों के प्रेम में सक्रिय होने की जरूरत है। संत पापा ने प्रश्न किया, उस प्रेम में क्यों सक्रिय होना है? क्योंकि प्रेम ने ही हम सभी का उद्धार किया है। हमें मुफ्त में धार्मिक माना गया है। न्याय संगत ठहराया जाना हमें मुक्ति के लंबे इतिहास में प्रवेश कराता है, जो हमारे लगातार गिरने और अयोग्यता के सामने ईश्वर के न्याय को दिखलाता है, जिन्होंने हमें नहीं छोड़ा बल्कि हमें धार्मिक बनाना चाहा और उसे कृपा द्वारा यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के दान से पूरा किया। तब संत पापा ने ईश्वर के कार्य करने के तीन तरीकों के बारे बतलाते हुए कहा, ईश्वर का तरीका है सामिप्य, सहानुभूति और कोमलता। वे हमेशा हमारे नजदीक हैं। वे दयालु और कोमल हैं। धार्मिकता वास्तव में ईश्वर का हमारे सबसे नजदीक होना है। पिता की कोमलता हमारे लिए बहुत अधिक है। ख्रिस्त ने हमें न्याय संगत ठहराया है। हमें दंड नहीं दिया जाता है। संत पापा ने कहा कि मूल रूप में हम संत हैं, किंतु हमारे कार्यों से हम पापी हो जाते हैं। हम ख्रिस्त को न्याय संगत ठहराने दें और उस धार्मिकता की कृपा से हम आगे जा सकेंगे। इस तरह विश्वास का प्रकाश हमें यह समझने में मदद देगा कि ईश्वर की दया कितनी असीम है, जो हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। किंतु यही प्रकाश हमें जिम्मेदारी को भी दिखाता है, जिसमें हमें मुक्ति के कार्य हेतु ईश्वर के साथ सहयोग करना है। कृपा की शक्ति को दया के कार्य में बदलने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम ईश्वर के प्रेम का साक्ष्य देते हुए जीने के लिए बुलाए गए हैं। संत पापा ने कहा कि आइए हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि हम सभी न्याय संगत ठहराए गए हैं। ईश्वर की नजरों में हम धार्मिक हैं। हमें इसे अपने कार्यों द्वारा सिद्ध करना है। इतना कहने के बाद संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और विश्व के विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों एवं विश्वासियों का अभिवादन किया। अंत में संत पापा ने सभी विश्वासियों और उनके परिवारों पर प्रभु येसु क्रिस्त के आनंद और शांति की कामना की तथा उन्हें अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
प्रभु तेरे चरणों में आया मैं, हे प्रभु शरण में आया।
प्रभु तेरे चरणों में आई मैं, हे प्रभु शरण में आई।
प्रभु तेरे चरणों में आया मैं, हे प्रभु शरण में
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कैथोलिक कलीसिया संत मिखाएल, संत गैब्रियल और संत राफाएल महादूतों का त्योहार मनाती है। इस दिन संत पापा ने ट्वीट कर महादूतों के संरक्षण में खुद को समर्पित करने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, आज कलीसिया महादूतों संत मिखाएल, संत गैब्रियल और संत राफाएल को याद करती है। वे ईश्वरीय कृपा के दूत हैं। आइए हम अपने आप को उन्हें सौंप दे ताकि हमारे अच्छे काम दुनिया में ईश्वर के प्यार को प्रकट कर सकें। और संत पापा ने बुधवार आम दर्शन के दौरान अपनी धर्म शिक्षा गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया, जिसमें संत पौलुस ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि हमारी धार्मिकता मसीह में विश्वास के माध्यम से आती है। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट संदेश में लिखा, हमारे विश्वास की प्रतिक्रिया हमसे मांग करती है कि हम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और अपने पड़ोसी के प्रेम में सक्रिय रहें। साथ ही खाद्य हानि और अपशिष्ट पर जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी लोगों से भोजन की बर्बादी को रोकने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, भूख की भयानक विपदा से लड़ने का अर्थ है बर्बादी से भी लड़ना। भोजन को फेंक देने का अर्थ है लोगों को फेंक देना। इस बात पर ध्यान न दिया जाना आज निंदनीय है कि एक वस्तु के रूप में भोजन कितना कीमती है और इस कीमती वस्तु का अंत इतनी बुरी तरह से होता है। विदित हो कि खाद्य अपव्यय के मुद्दे को हल करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को 2019 में खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। और घातक हमले के बाद संत पापा ने नाइजीरियाई लोगों की सुरक्षा की अपील की। संदिग्ध जिहादियों ने सप्ताहांत में उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में कई हमले किए जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान हमलों के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और सभी नाइजीरियाई लोगों की सुरक्षा का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं मरने वालों के लिए, घायलों के लिए और नाइजीरिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा की हमेशा गारंटी मिलेगी।
कुडना राज्य के सुरक्षा प्रमुख के अनुसार पहला हमला रविवार को कौरा जिले के मदमई गांव में हुआ, जहां 34 निवासियों की हत्या कर दी गई और अन्य 7 घायल हो गए। अधिकारी ने कहा कि सैनिकों को हमले के स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने जिहादी आतंकवादियों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने से पहले हमलावरों के बीच खूब गोलियां चली। उसी अधिकारी ने बाद में एक और बयान में कहा कि आतंकवादियों ने कासेरे गांव पर प्रतिशोध में एक और हमला किया, जहां 8 लोग मारे गए और अन्य 6 घायल हो गए और कई घर नष्ट हो गए। अलग से नाइजीरियाई सेना ने कहा कि पश्चिम अफ्रीका में तथाकथित इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध आतंकवादियों ने रविवार को भी सोकोतो राज्य में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया। सैनिकों ने हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन इस हमले में 17 सैनिक मारे गए। उत्तर पश्चिमी और मध्य नाइजीरिया ने प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा रखने वाले चरवाहों और किसानों के साथ कई वर्षों की हिंसा को सहन किया है और COP26 के इतालवी ब्रिटिश सह अध्यक्षता में इटली द्वारा मिलान में आयोजित युवा 4 जलवायु के संदर्भ में सतत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्थित संगोष्ठी के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने युवाओं को वीडियो संदेश दिया। संत पापा ने कहा कि वे युवाओं के सपनों और भलाई की परियोजनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं तथा इस तथ्य के लिए भी कि वे मानवीय संबंधों और पर्यावरण की देखभाल दोनों के लिए चिंतित हैं। यह एक चिंता का विषय है जो सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि यह इस तथ्य को प्रकट करती है कि युवा न केवल कार्यवाही के लिए तैयार हैं, बल्कि वे धैर्यपूर्वक सुनने, रचनात्मक संवाद और आपसी समझ के लिए भी उपलब्ध हैं। संत पापा ने कहा कि वे युवाओं को एक व्यापक शैक्षिक गठबंधन के माध्यम से प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे पीढ़ियों को अच्छी परिपक्व विखंडन पर काबू पाने और रिश्तों के ताने बाने के पुनर्निर्माण में सक्षम बनाया जा सके, ताकि हम एक अधिक भ्रातृत्वपूर्ण मानवता तक पहुंच सकें। कहा जाता है कि आप भविष्य हैं, लेकिन इन चीजों में आप वर्तमान हैं। आप ही हैं जो आज वर्तमान में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। वैश्विक शैक्षिक समझौता, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, ऐतिहासिक परिवर्तन पर साझा प्रतिक्रिया देने का प्रयास करता है, जिसे मानवता अनुभव कर रही है और जिसे महामारी ने और भी स्पष्ट कर दिया है। तकनीकी और राजनीति समाधान पर्याप्त नहीं है, इसे प्रत्येक सदस्य अपनी साझेदारी समझे और एक शैक्षिक प्रतिक्रिया द्वारा समर्थित हो, जो मानव बंधुत्व और पर्यावरण के बीच गठबंधन को केंद्रित विकास और स्थिरता की सामाजिक मॉडल को बढ़ावा देता है। संत पापा ने कहा कि लोगों और पर्यावरण के बीच सामंजस्य होना चाहिए। संत पापा ने कहा, सामान्य विचारों और परियोजनाओं के माध्यम से ऐसे समाधानों को खोजना संभव होगा जो ऊर्जा की गरीबी को दूर करती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के केंद्र में आम संपत्ति की देखभाल करते हैं, स्थायी उत्पादन परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। यह समझदारी से निर्णय लेने का समय है, ताकि हम जान सकें कि हाल के वर्षों में प्राप्त कई अनुभवों को कैसे महत्व दिया जाए, ताकि देखभाल की संस्कृति, जिम्मेदार साझाकरण की संस्कृति को संभव बनाया जा सके। अपने संदेश के अंत में संत पापा ने युवाओं को मानवता की भलाई के लिए काम करने के मार्ग में सदा आगे बढ़ते रहने हेतु प्रोत्साहित किया और कहा कि वे उनके साथ हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।